ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम अश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 18 श्लोक संख्या 71। लेकिन इसी श्लोक से पहले 6 श्लोक में परपट नहीं है, तात्पर्य नहीं है, तो पहले हम उन 6 श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे, इसके बाद हम 71 नंबर श्लोक पे आएंगे। श्लोक संख्या 63। तमोचु पाठ्यमानास्ते सर्वे प्राञ्जलयो नृपः किं न इन्द्रजिङ्घा शशी भ्रातरो मरुतस्तव। अत्यंत संतप्त होकर हाथ जोड़कर उन्होंने इंद्र से कहा, हे राजन, हे इंद्र, हम तुम्हारे भाई मरुदगण हैं, तुम हमें क्यों मार रहे हो? मां भैष्ट भ्रातरो महियम यूयमित्याह कौशिकः अनन्य भावात् पार्षदानात् आत्मनो मरुताम गणान। जब इंद्र ने देखा कि वे वास्तव में उनके भक्त अनुयायी हैं, तो उसने उनसे कहा कि यदि तुम सचमुच मेरे भाई हो तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। न ममार्दिते गर्भ श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुलिस सुच्छुणो द्रौण्यस्त्रेण यथा भवान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, आप अश्वत्थामा के ब्रह्मा से जला दिए गए थे, किंतु जब श्री कृष्ण आपकी माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए तो आप बच गए। इसी प्रकार यद्यपि इंद्र ने एक गर्भ को वज द्वारा 49 खंडों में काट डाला था, किंतु वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से बच गए। सकृदिष्टान्ति पुरुष पुरुषो याति साम्यताम संवत्सरम किंचिदूनम दित्या यद्दरिरर्चित सजूरिन्द्रेण 50 देवास्ते मरुतो भवन व्यपोहय मातृदोषम ते हरिणा सोमपाकृता। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा एक बार भी करता है तो वह वैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है, अतः भगवान विष्णु के रूप को प्राप्त करता है। संकल्प पूर्वक कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए दीति ने लगभग 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा की। आध्यात्मिक जीवन की इस शक्ति के कारण 49 मरुदगुण पैदा हुए। यद्यपि मरुदगण दीति के गर्भ से पैदा हुए, किंतु परम भगवान की कृपा से वे देवताओं की बराबरी पर आ गए। यह कैसा आश्चर्य है। दितिरुत्थाय ददृष्टे कुमारानललम प्रभान इंद्रेण सहितान देवी पर्यतुष्यन्द निंदिनः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से दिति पूर्णतया शुद्ध हो गई थी। जब वह बिस्तर से उठी तो उसने इंद्र समेत अपने 49 पुत्रों को देखा। ये 49 पुत्र अग्नि के समान तेजवान थे और इंद्र के मित्र थे, अतः वह अतीव प्रसन्न थी। अथेन्द्रमाह ताताह आदित्यानां भयावहम अपत्यमिच्छन्त चरम व्रतमेतस्सु दुष्करम। तदंतर दिति ने इंद्र से कहा, हे पुत्र, मैं इस कठोर व्रत का इसलिए पालन कर रही थी कि तुम 12 आदित्यों को मारने के लिए एक पुत्र प्राप्त कर सकूं। एकः संकल्पितः पुत्रः सप्त सप्ता भवन कथम यदि ते विदितं पुत्र सत्य कथय मामृषाम। मैंने केवल एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, किंतु मैं देखती हूँ कि ये तो 49 हैं। यह किस तरह संभव हो सका? मेरे पुत्र इंद्र, यदि तुम जानते हो तो मुझसे सच सच कहो, झूठ बोलने का प्रयास मत करना। श्लोक संख्या 71। इंद्र उवाच अम्बते हम व्यसीत उपधा उपधार्य आगत अंतिकम् लब्ध अंतर आच्छिद्दम् गर्भम अर्थ बुद्धि न धर्मदृक् अम्बते हम व्यवसितम् उपधार्य आगत अंतिकम् लब्ध अंतर अच्छिदम् गर्भम् अर्थ बुद्धि न धर्मदृक्। इंद्र उवाच अम्बते अहम् व्यसितम् उपधार्य आगत अंतिकम् लब्ध अंतरह आच्छिदम् गर्भम् अर्थ बुद्धि न धर्मदृक्। आवृत्ति करिए। शब्दार्थ। इंद्र उवाच, इंद्र ने कहा, अम्ब हे माता, ते तुम्हारा, अहम मैं, व्यवसितम व्रत उपधार्य समझकर, आगत आया, अंतिकम पास ही, लब्ध पाकर, अंतरह त्रुटि दोष, अच्छिदम मैंने काट दिया, गर्भम गर्भ, अर्थबुद्धि स्वार्थवश, ना नहीं, धर्मदृक धर्म दृष्टि वाला। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। इंद्र ने उत्तर दिया, हे माता, स्वार्थ से अंधा होने के कारण मैंने धर्म से मुंह मोड़ लिया था। जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप आध्यात्मिक जीवन का महान व्रत धारण कर रही हैं, तो मैं उसमें कोई त्रुटि निकालना चाहता था, और जब मुझे त्रुटि मिल गई तो मैं आपके गर्भ में प्रविष्ट हो गया और मैंने गर्भ को खंड खंड कर दिया। तात्पर्य, जब इंद्र की मौसी दीति ने बिना हिचक के इंद्र को अपना मंतव्य कह सुनाया, तो इंद्र ने अपना मंतव्य बताया। इस प्रकार दोनों परस्पर शत्रु न रहकर एक दूसरे से सत्य बोलने लगे। विष्णु की संगति के प्रभाव से ही ऐसा होता है। श्रीमद् भागवतम 5:18-12 में कहा गया है, यस्याति भक्तिर भगवन अचिंत किंचनाह सर्वे गुणस्तत्र समासते सुराः। यदि किसी में भक्ति की प्रवृत्ति जागृत होती है और वह परमेश्वर की पूजा करके शुद्ध बन जाता है, तो उसके शरीर में निश्चय ही समस्त श्रेष्ठ गुण प्रकट होते हैं। विष्णु की पूजा के स्पर्श से दिति तथा इंद्र दोनों शुद्ध हो गए। ओम ज्ञानतिमिरांधश्च ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम्। ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಶಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶಿವಾಷಾದಿ ಶ್ರೀ ಗೌರ್ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ರಾಮ್ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ: ಅಂಬತೆ ಅಹಂ ವ್ಯವಸಿತಂ ಉಪಧಾರ್ಯ ಆಗತ ಅಂತಿಕಂ ಲಬ್ಧ ಅಂತರ ಅಚ್ಛಿದಂ ಗರ್ಭಂ ಅರ್ಥಬುದ್ಧಿ ನ ಧರ್ಮದ್ರಿಕ್. ಇಂದ್ರನೇ ಉತ್ತರ ದಿಯ: ಹೇ ಮಾತಾ, ಸ್ವಾತ್ ಸೆ ಅಂಧಾ ಹೋನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಮೇನೆ ಧರ್ಮ ಸೆ ಮುಂಹ ಮೋಡ್ ಲಿಯಾ ಥಾ. ಜಬ್ ಮುಜೆ ಜ್ಞಾತ ಹುವಾ ಕಿ ಆಪ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಕಾ ಮಹಾನ್ ವ್ರತ ಧಾರಣ ಕರ್ ರಹೀ ಹೈ, ತೋ ಮೈ ಉಸ್ಮೇ ಕೋಯಿ ತ್ರುಟಿ ನಿಕಾಲನಾ ಚಾಹತಾ ಥಾ, ಔರ್ ಜಬ್ ಮುಜೆ ತ್ರುಟಿ ಮಿಲ್ ಗಯಿ ತೋ ಮೈ ಆಪ್ ಕೆ ಗರ್ಭ ಮೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಹೋ ಗಯಾ ಔರ್ ಮೈನೆ ಗರ್ಭ ಕೋ ಖಂಡ ಖಂಡ ಕರ್ ದಿಯಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಮಲ್ ಪುರಾಣ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಅಮಲ್ ಪುರಾಣ ಅರ್ಥ ಜಿಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಕೋಯಿ ಮಲ್ ನಹೀ ಹೈ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಸವೈ ಪುಂಸಾಂ ಪರೋ ಧರ್ಮೋ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರ್ ಅಧೋಚಜೆ ಅಹೇತು ಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತಾ. ಜೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಹೈ ಯೇ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹೇತು ಕಿ ಔರ್ ಅಪ್ರತಿಹತಾ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಸಂಪಾದನ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ. ಐಸೆ ತೋ ಗೀತಾ ಭಗವಾನ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಪ್ರಾಯ ಚಾರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಲೋಗ್ ಹಮಾರಿ ಶರಣ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ: ಆರ್ಥ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು. ಲೇಕಿನ್ ಈ ಚಾರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಲೋಗ್ ಜೊ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಶರಣ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಭಕ್ತ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ನಹೀ ಹೈ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಗೀತಾ ಭಗವಾನ್ ಬೋಲ್ತೆ ಕಿ ಚಾರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಲೋಗ್ ಹಮಾರಿ ಶರಣ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಈ ಚಾರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಲೋಗ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ನಹೀ ಹೋತೆ ಹೈ. ಯಾ ತೋ ಏಕ್ ಜಗಹ ಔರ್ ಐಸೆ ಭಗವಾನ್ ಖುದ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಅಕಾಮ ಸರ್ವ ಕಾಮೋ ವಾ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಉದಾರಧಿ ತಿಬ್ರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ. ಯದಿ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ಕಾಮನಾ ನಹೀ ಹೈ ಯಾ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಭೌತಿಕ ಕಾಮನಾಯ ಹೈ ತೋ ಭಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಶರಣ ಮೇ ಆನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ತೋ ಯೇ ಸಬ್ ಶ್ಲೋಕೋ ಕಾ ಆಶಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಜೈಸೆ ಕಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಏಕದಮ್ ವಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಕರ್ತಾ. ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜ್ಜಿತ ಕೈತವ, ಜಿತ್ನೆ ಭಿ ಕೈತವ ಧರ್ಮ ಹೈ ಸಬ್ಕಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಕರ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಸಿರ್ಫ್ ಏಕಿ ಧರ್ಮ ಹೈ ಇಸ್ಕೆ ಅಂದರ್, ವೋ ಹೈ ಅಪ್ರತಿಹತ ಭಕ್ತಿ, ಅಹೇತುಕಿ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ. ಲೇಕಿನ್ ಬೋಲಾ ಜಾ ರಹಾ ಅಕಾಮ ಸರ್ವ ಕಾ ಕುಛ್ ಭಿ ಹೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಶರಣ ಮೇ ಆಓ ಆಪ್. ಇಸ್ಕಾ ಆಶಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಆಶಯ ಯಹೀ ಹೈ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಶರಣ ಮೇ ಆನೆ ಸೆ ಫಾಯ್ದಾ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ಯಹಾಂ ಆನೆ ಪೆ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಿ ಹೈ. ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಹೀ ಹೈ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಮಂದಿರ ಮೇ ಹಮ್ ಆತೆ ಹೈ, ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಹೈ, ತೋ ಯಹಾಂ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಿ ಹೈ ಔರ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕಿ ಸಂಗತಿ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಜೋ ಕಾಮನಾ ಲೇಕರ್ ಆಯೆ ಹೈ ಯಾ ಜೋ ಚಾರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಲೋಗ್ ಆಯೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಶರಣ ಮೇ, ವೋ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಸಂಗತಿ ಮೇ ಆಕೆ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ರಹಕೆ ಉನ್ಕಿ ಕಾಮನಾಯೆ ಶುದ್ಧ ಹೋ ಜಾಯೆಂಗಿ ಔರ್ ವೋ ಭಿ ಉಸಿ ಚೀಜ್ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಲೆಂಗೆ ಜಿಸ್ ಚೀಜ್ ಕೋ ಭಾಗವತಂ ದೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಸಂಗತಿ ಮೇ ಆಕೆ. ತೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಸಂಗತಿ, ಸಾಧು ಕಿ ಸಂಗತಿ, किसी भी प्रकार से मंदिर में आएंगे तो मंदिर में साधु रहते हैं, मंदिर में भक्त रहते हैं, तो महिमा है साधु संगति की। कैसे साधु संगति लेंगे? तो ऐसे अकामा सर्व कामो, ऐसे तो बोलते हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसम सिंधु में, भक्ति क्या है बोलते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा दिनावृतम, अन्य कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ भगवान कृष्ण को तुष्ट करने की इच्छा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कोई इस दृष्टिकोण से नहीं आता है, कोई ना कोई कामना हमको खींच के लेके आती है। तो सर्व काम, भगवान के शरण में आने से भी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। से कल एक जगह मैं लेक्चर देने के लिए गया था, तो अभी आज से नवरात्र चालू हो रहा है, दुर्गा जी का व्रत लोग चालू करते हैं, तो मैं ऐसे ही एक भक्त हैं, प्रारंभिक अवस्था में है, अभी 4-5 महीने से भक्ति कर रहे हैं, तो मैं उनको बुलाया खार घर के लिए, क्या पाओ हम लोग खार घर चलेंगे, वहाँ भगवान का अभिषेक होगा। बोले नहीं नहीं प्रभु जी, कल हम अभी नवरात्रि घर पे बैठा रहे हैं, कल हम व्रत किए हैं। तो बोला अच्छा। तो ऐसे ही वो बोलने लगे कि देखिए प्रभु जी, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन दुर्गा देवी की भी कृपा चाहिए ना, अर्थात धन दौलत भी चाहिए ना, उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो लोगों की सामान्य आशा रहती है कि देवी देवताओं की भक्ति करने से, अन्य प्रकार के धर्म, अन्य प्रकार की वृत्तियां अपनाने से धन दौलत आएगा, धन संपत्ति आएगा, सब आएगा। लेकिन भगवान यहां बोल रहे हैं कि यदि तुमको ये भी चाहिए तो हमारी शरण में आओ। तो होता है कि भगवान की शरण में आने से भी हमारी इच्छा पूरी होती है, ऐसा नहीं कि भगवान के पास जो आते हैं और उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। भगवान ने दिया भी है, बहुत भक्तों को दिया है, और ऐसा दिया है कि कोई संसार का देवी देवता या कोई भी नहीं दे सकता है। भगवान ने सुदामा को दिया, भगवान ने ध्रुव को दिया, भगवान ने बलि महाराज को दिया। हाँ, और भगवान इसलिए दिए क्योंकि लोगों के अंदर एक भ्रम फैला है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए भगवान ने दिया भी है कि देखो मैं लेता तो हूं लेकिन जब मैं देता हूं तो ऐसा देता हूं कोई दे भी नहीं सकता है। तो ये दिखाने के लिए, इस सत्य का प्रतिपादन करने के लिए हमारी तरह कोई दे भी नहीं सकता है, भगवान ने दिया भी है और देके दिखाया भी है। लेकिन भगवान का लेना और देना थोड़ा अलग होता है, समझ नहीं सकते हैं हम शुरू शुरू में। तो ऐसी प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, कोई इच्छा लेके आते हैं तो भी भगवान इच्छा पूरी कर देते हैं। तो यदि भक्ति के अलावा यदि अन्य अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं तो भी भगवान पूरा कर देंगे। तो अन्य प्रकार की भौतिक इच्छा पूरा होने में भी हमको वस्तु तो मिल जाएगी, जिस वस्तु की कामना हम भगवान के सामने करते हैं लेकिन वो वस्तु मिल जाएगी, स्वाभाविक है भगवान दे देंगे, लेकिन हमको आनंद की अनुभूति नहीं होगी क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु हमको आत्मतृप्ति प्रदान नहीं कर सकती है क्योंकि आत्मा का संबंध भगवान से है। तो भौतिक वस्तु की कामना है तो भी भगवान दे देंगे, हमको वस्तु मिल जाएगी लेकिन हमको आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद की खोज तो हम कर ही रहे हैं, प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा है ना, आनंद की खोज, हमको आनंद चाहिए, आनंद की खोज हम करते रहते हैं। तो ऐसे इच्छाएं पूरी हो जाती, वस्तु मिल जाती लेकिन हमारे मन में फ्रस्ट्रेशन रहता है, हम संतुष्ट नहीं होते। उस संतुष्टि का निराकरण करने के लिए फिर हमको साधु की आवश्यकता पड़ जाती है कि हम क्या करें कि हमको शांति मिले, हमको आनंद मिले, और वहीं भक्तों को मौका मिल जाता है प्रचार करने का, और फिर वहीं से धीरे धीरे उनकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। यह है इस स्तर तक लाने की प्रक्रिया। सेम प्रसंग यहां पे भी चल रहा है, जैसे हम देख रहे हैं, हम श्रवण करते आ रहे हैं। इस अध्याय का नाम है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। ऐसे देखेंगे तो इस अध्याय का नाम बहुत हिंसक लग रहा है, इंद्र भगवान का भक्त है और उस भक्त को मारने का योजना बन रहा है, तो बहुत ही हिंसक चैप्टर का नाम है, राजा इंद्र का वध करने की के लिए दिति का व्रत। व्रत कर रही है, भक्ति कर रही है, लेकिन इच्छा क्या है उसका, एक भक्त की हत्या। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, योजना तो थी, इच्छा तो थी, भगवान के पास गई, भगवान की भक्ति कर रही थी, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकला अंत में, जो कि अभी हम श्रवण कर रहे हैं, अभी एक दो क्लास पहले चालू हो गया, क्या हुआ, इसका निष्कर्ष निकला शुद्ध भक्ति। इच्छा अलग थी लेकिन भक्ति करते करते क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। कैसे ट्रांसफर हुआ, एक शुद्ध भक्त की संगति मिली, कश्यप मुनि का संगति मिला और कश्यप मुनि के कृपा से, कश्यप मुनि के आशीर्वाद से उसकी चेतना जो दूषित थी वो शुद्ध हो गई। और अंतोगत्वा निष्कर्ष कहाँ जा रहे हैं, अभी जा रहा है, थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कैसे हुआ ये। तो प्रारंभ में हमने श्रवण किया कि से कुछ लोग नए आए, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं बता रहा हूं कि दिति के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, जिनका वध भगवान विष्णु ने कर दिया था। दिति के मन में ऐसी धारणा आई, ऐसा विचार आया कि भगवान विष्णु का कोई वैर तो नहीं था, क्योंकि भगवान विष्णु समदर्शी हैं, सबके लिए समान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे पुत्रों की हत्या की, हमारे पुत्रों का वध किया। क्यों किया? देवता लोग का कार्य सिद्धि के लिए, या देवता लोग उकसाए भगवान को वध करने के लिए, इसलिए देवता लोगों की कार्य सिद्धि के लिए भगवान विष्णु ने ऐसा कर्म किया, हमारे पुत्रों का वध कर दिया। तो विष्णु दोषी नहीं है, दोषी कौन है? इंद्र आदि देवता, देवताओं में सबसे प्रमुख कौन है? इंद्र। तो उनके मन में इंद्र के प्रति ईर्ष्या आ गई और अपने पति को बहुत ही सेवा भावना से प्रसन्न किया। और प्रसन्न करने के बाद जब कश्यप मुनि प्रसन्न हो गए तो उन्होंने एक आशीर्वाद मांगा कि हमको कोई आप ऐसा पुत्र प्रदान करिए जो कि इंद्र का वध करने वाला हो। हालांकि सुन के कश्यप मुनि को बहुत दुख हुआ, बहुत पश्चाताप करते हैं, लेकिन आचार्य और गुरु बहुत दक्ष होते हैं कि किस प्रकार शिष्य को कैसे नियोजित करना है कि उसकी चेतना शुद्ध हो जाए। तो ऐसी योजना बना के उन्होंने दीति को एक व्रत का अनुष्ठान करने का अनुष्ठान करने के लिए कहा कि पयोव्रत। हालांकि जो व्रत है उस व्रत का पूरा जो सिद्धांत है वो बहुत ही अच्छा वैष्णव व्रत है, जो नियम कानून वास्तव में भक्ति जीवन में पालन करते हैं वैसे ही उस विधि विधान का पालन उस व्रत के अंदर बताया गया, जो कि हम पीछे सुन चुके हैं, कैसे सोना है, क्या खाना है, क्या प्रसाद खाना है, हाँ कैसे रहना है, किसका चिंतन करना है, एकदम वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने का ये बात बताया गया। और कश्यप मुनि ने बोला कि देखिए आप यदि इस व्रत का, एक साल का व्रत था हो, और यदि इस व्रत का आप अच्छे से पालन करेंगे बिना किसी त्रुटि के रहित, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, अर्थात आपको ऐसा पुत्र मिलेगा जो इंद्र का वध कर दे। लेकिन यदि आपसे रंच मात्र भी त्रुटि हो गई, जो मैंने विधि विधान बताया है उसमें यदि रंच मात्र भी त्रुटि हो गई तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात वो इंद्र का शत्रु नहीं होगा, वो इंद्र का मित्र होगा। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा राज बिहारी भगवान की, श्री श्री सीता रामलक्ष्मण हनुमान की, नित्य गौर भगवान की जय। तो वो इंद्र का शत्रु नहीं होगा, इंद्र का मित्र होगा। और इसके बाद दिति ने उस व्रत का पालन करना शुरू किया। हो न हो ये बात इंद्र को पता चल गई, इंद्र को पता चल गई। और इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि सब, कोई भी संसार में मरना नहीं चाहता है, सबको मृत्यु से भय रहता है, कोई भी हो। और अपने बचने के लिए व्यक्ति, माँ हो, बाप हो, इवन मौसी भी हो, ये दिति कोई दूर का संबंध नहीं है, उनकी माँ की सगी बहन है, और उसके पुत्र की भी योजना बना ली है, क्योंकि मृत्यु सबको भय रहता है, कोई संसार में मरना नहीं चाहता है। तो इंद्र आए और आके वहां एक सर्वेंट की नौकरी उनके घर पे करने लगे, वेश बदल के करने लगे और मौका देखने लगे, क्योंकि उनको पूरा खुफिया एजेंसी से जानकारी हो गया था कि क्या क्या हुआ है, कैसे आशीर्वाद मिला है, क्या है और क्या शर्त दिया है कश्यप मुनि ने। तो उनको यह भी शर्त पता चला था कि कोई यदि त्रुटि हुई तो उल्टा हो सकता है। तो वो त्रुटि ढूंढने लगे कि दिति कोई गलती करे, उससे नियम कानून में कोई गलती हो जाए और मैं उसके ऊपर अटैक कर सकूं। और एक दिन इंद्र को यह मौका मिल गया। कैसे मौका मिल गया? व्रत बहुत कठिन था, शेड्यूल दिन भर से बहुत टाइट चलता था और एक दिन दिति पूरा दिन भगवान के व्रत में सेवा में एंगेज थी और शाम को पूरा टायर्ड हो गई, थक गई। और थक के उसने भगवान का प्रसाद लिया लेकिन अच्छे से मुंह हाथ पैर नहीं धोया, पैर का वर्णन समझ के पैर नहीं धोया इसने और बिना पैर धोए जाके सो गई, अपवित्र अवस्था में सो गई और सोई भी तो शाम को सो गई। शाम को सोना मना है, एक तो शाम को सो गई और ऊपर से जल्दी जल्दी उसने प्रसाद लिया था, हाथ पैर भी अच्छा से नहीं धोया था और सो गई और इंद्र को मौका मिला। इंद्र उसी समय दीति के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उस गर्भ का सात खंड करते हैं। गुस्से में थे ही वो और खटाखट अपने ब्रज से उसके ऊपर वार करते हैं, सात वार कर देते हैं। तो अचानक मान लीजिए परीक्षित महाराज के अंदर ऐसा प्रश्न उठ सकता है, जिज्ञासा उठ सकता है कि सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी का एक पार्ट भी एक भी भाग कर दिया तो मर जाएगा वो, यहां तो सात भाग कर दिए तो स्वाभाविक प्रश्न उठेगा क्यों मरे नहीं, वो मरे नहीं क्या, इतना डिवाइड कर दिया गया। तो ये चीज पूछा नहीं परीक्षित महाराज से, लेकिन शंका ना आ जाए परीक्षित महाराज के दिमाग में, इसलिए बिना पूछे इस प्रश्न का उत्तर दे दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और बोले कि देखिए परीक्षित, आप भी मां के गर्भ के अंदर थे और आपके ऊपर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र कोई काट नहीं था अर्थात आपको जाना ही था, पांडव लोग भी सब लोग भी किसी का असस कोई काम नहीं किया, सब लोग निसहाय हो गए और उस समय भगवान कृष्ण ने आपकी रक्षा गर्भ के अंदर की थी, भगवान बाहर थे, भगवान उसमें तीन रूप पकड़ा था सुदर्शन के द्वारा बाहर से और सामने भी खड़े थे और गर्भ के अंदर भी जाके आवृत कर लिए थे, उस गर्भ के ऊपर उस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं आया, गर्भ जला नहीं। तो वो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने आपकी भी गर्भ में जिस प्रकार रक्षा की थी अर्थात आप मर सकते थे लेकिन भगवान ने बचा लिया, ब्रह्मास्त्र से भी आपको बचा लिया, तो भगवान की अचंत शक्ति है, यदि भगवान बचाना चाहते हैं तो कौन मार सकता है। तो इस प्रकार उस भ्रूण की रक्षा, उस गर्भ की रक्षा भगवान ने स्वयं किया, भगवान स्वयं रक्षा करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जो पुत्र था कोई सामान्य पुत्र नहीं था, वो भक्ति के बल पे वो पुत्र उत्पन्न हुआ था, तो वो कैसे उसका नाश हो सकता है। आप भी बहुत बड़े भक्त थे, परीक्षित महाराज ने गर्भ में भी भगवान गर्भ में बहुत बड़े भक्त थे परीक्षित महाराज, तो यहां भी ये भक्ति के प्रभाव से पुत्र पैदा हो रहा है इसलिए भगवान ने उसका भी नाश नहीं होने दिया, ये भगवान की इच्छा से हुई, भगवान की अचिंत शक्ति से हुई, इसलिए इस पे शंका करने का कोई बात नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास अचिंत शक्ति है, उनके अचिंत शक्ति के प्रभाव से वो किसी को मार भी सकते हैं किसी को बचा भी सकते हैं, उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए क्यों ऐसा हो गया कैसे ऐसे हो गया हो कैसे और क्यों, ये सब शब्द भगवान के लागू नहीं होते हैं, भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने बचा लिया उनको और इसके बाद जब उसको काट रहे थे तो रोने की आवाज आई, बच्चे को रोने की आवाज आई, बच्चे ने रोया और बोले, इंद्र को गुस्सा आया, बोले रो मत और उससे उनका नाम पड़ा मरुतगण, मरुतगण उससे उनका नाम पड़ा और ऐसा करके रो मत गुस्से में और सात भाग काट दिए, सातों का सात भाग कर दिए, रो मत गुस्से में थे, बोले रो मत, और जैसे बच्चे को भी मारते हैं तो रोता है तो बोले रो मत, एक थप्पड़ और मारते हैं, तो ऐसे इंद्र को भी गुस्सा आ गया और बोले रो मत करके और गुस्से में थे ये को आ रहा है क्या, और सात भाग में बांट दिए तो 49 भाग डिवाइड हो गए और इसके बाद वो 49 मरुद्गण जब पैदा होते हैं तो दीति को देख के बहुत आश्चर्य होता है। हाँ मरुद्गण बोलते हैं कि नहीं हमको मारो मत, हम आपके भाई ही हैं, हम आपके भाई सदस्य हैं, आप हमको क्यों मार रहे हो। तो अचानक जब देखा उन्होंने कि मैंने ऐसा किया लेकिन ये तो कुछ विलक्षण घटना घट रही है, तो इंद्र भी भक्त हैं, उन्होंने भगवान की योजना समझ लिया कि कुछ न कुछ अद्भुत बालक हैं। हाँ एक बार और मारने का गर्भ का नाश करने का प्रयास किया था इंद्र ने प्रहलाद महाराज का, और उस समय नारद जी आके समझाया थे कि इसका वध मत करो ये बहुत ही बड़ा भक्त है, तो ये घटना घट चुकी थी तो उससे भी लेसन लिए होंगे, इंद्र को समझ में आया होगा कि हो ना हो ये कोई सामान्य बालक नहीं है, और उन्होंने बोला, बालकों ने बोला कि हम आपके भाई ही हैं, हमको क्यों मार रहे हो। तो रुक गए और उस गर्भ को छोड़ दिए और इसके बाद दिति का गर्भ होता है, 49 पुत्र पैदा होते हैं। और ये देख के दिति को बहुत ही आश्चर्य होता है, बहुत ही आश्चर्य होता है। और वो आश्चर्य से पूछती है जो आज का प्रश्न है, आज का जो प्रश्न है वो पूछती दिति से कि इंद्र से कि इंद्र का उत्तर है, इसके पहले 70 नंबर श्लोक में दिति ने प्रश्न पूछा है कि मैंने केवल एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, किंतु मैं तो देखती हूं कि ये 49 हैं, यह किस तरह संभव हो सका? और मैंने जो इच्छा की थी वो तुम्हारी हत्या के लिए मैंने योजना बनाई थी, लेकिन अभी अभी हमारे अंदर ऐसा भाव क्यों नहीं रह गया? ऐसा पुत्र कैसे उत्पन्न हो गया जिनकी बहुत दिव्य मान है, जिनके अंदर कोई ऐसा चीज देखने का नहीं मिल रहा है कि आपकी हत्या कर सके? तो हे इंद्र, ये सब कैसे संभव हो सका? और इंद्र भी बगल में खड़े थे, उस गर्भ से बाहर आ गए थे, बच्चे भी बाहर आ गए और वो भी बाहर आ गए, दोनों लोग बाहर खड़े थे। तो मानो तो आमने सामने इंद्र से पूछ रही कि ये सब हुआ कैसे, आप सच सच बताओ कैसे 49 पुत्र पैदा हो गए हमारे, सच सच कहो। तो अभी इंद्र आज का प्रसंग बोलते हैं कि हे माता, स्वार्थ अंधा होने के कारण जब मुझे आपकी योजना पता चली कि आप ऐसा ऐसा व्रत कर रही हैं मुझे मारने के लिए, तो मैं आया और मैंने ऐसी योजना बनाई, मैंने इंद्र का हत्या, मैंने इनको मारना चाहा, लेकिन ये आपकी भक्ति का प्रभाव है कि आपको ऐसे पुत्र पैदा हुए। मेरी योजना दूसरी थी, लेकिन आपके भक्ति के प्रभाव से ये ऐसा हुआ। तो शुरू होता है भक्ति की महिमा। ये वास्तव में जो प्रसंग है जो हम पढ़ रहे हैं, इसका अंत होता है भक्ति की महिमा, कि भक्ति कितनी प्रभावशाली है। कभी कभी हम साधक भक्तों में भी हम भजन कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, लेकिन ये ईर्ष्या द्वेष नफरत काम क्रोध लोभ मोह ये भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। कभी हम प्रश्न पूछते हैं कि हमारे मन के अंदर ऐसी बात, भक्तों में भी कभी कभी देखा जाता है द्वेष है ईर्ष्या है। जैसे इंद्र भी भक्त है, दिति भी भक्त है, लेकिन एक ऐसा स्थिति आया कि दोनों में द्वेष हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है, हम भी उसी से उसी में हम लोग भी फंसे हुए हैं। हम साधक भक्त भी, हमारे अंदर भी ये सब इच्छाएं हैं ईर्ष्या द्वेष की, हम पूरे मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन ये बड़ी चीज नहीं है कि हमारे अंदर कितने दोष हैं, महत्वपूर्ण चीज इसमें यह सीखने के लिए है कि भक्ति का प्रभाव ऐसा है तो क्या रास्ता है बचने का, कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं, कैसे हम इस चीज से दूर जा सकते हैं। तो हमारे लिए लेसन यही है कि हम जो कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने दिया है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु ने दिया है, जो हम इस कान में सीखने का प्रयास कर रहे हैं, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीति की कुछ इच्छा थी, कश्यप मुनि ने एक प्रोसेस बताया और बोला तुम ठीक ठीक नियम से पालन करना। तो भक्ति के जिस प्रोसेस में हम लगे हुए हैं, ये पूरा सच्चा में हमको शुद्ध करने में, शुद्ध भक्ति प्रदान करने में, भगवत धाम भेजने में, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि प्रॉब्लम है तो हम उतने सीरियस नहीं है, हम गंभीर नहीं है। ये डिपेंड करती है हमारी गंभीरता के ऊपर कि हम कितने गंभीर हैं उस नियम का पूरा पूरा ठीक ठीक पालन करने में। एक साल का व्रत था, दीति ने पूरा पूरा नियम से पालन किया। नियम से पालन करने के कारण दीति की जो वासना थी, जो कलमस था, जो ईर्ष्या था, जो द्वेष था, वो अपने आप खत्म हो गया। पता भी नहीं चला दीति को, पता भी नहीं चला दीति को। और वास्तव में प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्यों ने ऐसा प्रोसेस दिया है, यदि हम इसको गंभीरता से लें, यही 16 माला जप, यही मंगला आरती, यही गुरु पूजा, यही भागवतम क्लास श्रवण, यही भक्तों का संग, यदि हम इसको सीरियस लें, इसके यदि हम गंभीर लें, तो ये सच्चा में हमको शुद्ध करने में, सिर्फ हमको लगे रहना है हम कहां हैं। प्रभुपाद जी, किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी हम जप करते हैं हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन भागता है, या हमको ऐसी वासनाएं सताती हैं, ऐसी इच्छाएं आती है। प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको किसने कहा कि आप मन को बस में करो। मैंने कहा आप सिर्फ सीरियस जप करो, चैंटिंग एंड हियरिंग करो। मन को जबरदस्ती बस में करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, मन को जबरदस्ती शुद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रोसेस ऐसा है कि शुद्ध कर देगा, बस प्रोसेस को गंभीरता से लो। ये प्रोसेस पर्याप्त है हमको शुद्ध करने में, शुद्ध भक्ति देने में। उसको हमको सीरियस से लेना चाहिए, उसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए। समस्या है कि हम लोग उसको गंभीरता से लेते नहीं है, हम लोग लापरवाही से लेते हैं, और इसलिए वो प्रोसेस हमको पूरा पूरा फल नहीं दे पाती है। और हमको लगता है कि हाँ इतने साल हो गए, इतने साल से हम भजन कर रहे हैं, हम सबकी यही दशा है, हम सब लोग उसी में फंसे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ इसलिए नहीं हो रहा है कि हम उतने गंभीर नहीं हैं जितने गंभीरता से दीति ने उस कर्तव्य का निर्वाह किया। कितनी डेंजर वासना थी उसके अंदर, एक भक्त की हत्या का प्रयास था उसके अंदर। हाँ, इंद्र कोई सामान्य प्राणी नहीं है। भगवान बोलते हैं कि मैं आता हूं इंद्र की रक्षा करने के लिए, भगवान खुद आते हैं इंद्र को बचाने के लिए, विपत्ति से बचाने के लिए, और ऐसे इंद्र की हत्या का प्रयोजन है। लेकिन ऐसा प्रयोजन भी शुद्ध हो गया और शुद्ध भक्ति पे स्तर पे आ गई। कैसे? सिर्फ भक्ति का गंभीरता से अभ्यास किया। प्रोसेस सही है, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण हम मन की वासनाओं को, मन की गंदगी को, मन के कलमश को हम शुद्ध पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के प्रसंग में ऐसे मेरा क्लास नहीं था, आज देवकिंद्र प्रभु क्लास था, लेकिन अचानक एक मीटिंग हो गया तो प्रभु जी ने मुझे बोला सुबह सुबह कि आप कुछ बोल दो, तो मेरा इतना कुछ तैयार नहीं है। तो जो मैं लेसन ले सका, शायद हम लोगों के लिए यही लेसन मिलता है इस श्लोक के आशय से, कि हम लोगों को प्रोसेस को गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, और गंभीरता से लेके, और प्रोसेस क्या है हमारा, सबसे बड़ा चीज इसमें देखा जाए तो हम गुरु वंदना में भी गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया एक, क्या कि जो गुरु हमको आदेश देते हैं, गुरु का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि होता है। और ठीक दीति ने अपने जीवन में यही धारण किया, जो कश्यप मुनि के लिए गुरु हुए, गुरु से उन्होंने जिज्ञासा किया, गुरु ने उनको उपदेश दिया, और उस गुरु की वाक को बहुत सीरियसता से लिया उन्होंने, बहुत गंभीरता से लिया। और इसके बाद धीरे 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 धीरे, हालांकि आचार, जैसे कि मैं बताया, आचार और गुरु बहुत पटु होते हैं, वो जानते हैं कि हमारा हित किस में है। दीति की वासना बहुत गंदी थी, लेकिन कश्यप मुनि जानते थे कि इसको कैसे स्वयं एंगेज करना है, कैसे शुद्ध हो जाएगी उसकी वासनाएं। तो ये पता है, प्रभुपाद जी को पता है, गुरु महाराज को पता है कि हम कभी कभी अपने मन से कुछ करना चाहते हैं, इच्छा कुछ व्यक्त करते हैं, लेकिन गुरु बोलते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और वास्तव में हमको ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, दीक्षा का मतलब यही होता है कि अभी हमारा कुछ नहीं रहा, जो रहा सब गुरु का रहा, अभी जो गुरु बोलेंगे हमारा जीवन उसके लिए है। तो उसको जितना जितना गंभीरता से हम इस शब्द पे अमल करेंगे, इस पे विचार करेंगे, उस अनुपात में हम शुद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे। यही मेन प्रयोजन है कि कैसे गुरु, साधु, शास्त्र, ये सबको अपने जीवन में बहुत गंभीरता से लिया जाए। हरे कृष्णा। 8:30 बजे तक बोला गया टाइम, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोगों को खारगढ़ जाना है। तो इतना ही मैं समझ पाया इस श्लोक में थोड़े समय के अंदर। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा राज बिहारी भगवान की।